सबको पता है कि शाम जी
हरे कृष्ण। हमने सोचा आपको एक भगवद गीता के तीसरे अध्याय का एक प्रसिद्ध श्लोक आपको सुनाए। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानु वार्तायतीय अगायु इंद्रिया मनो मोगम पड़ता था जीवती। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वो निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। हरे कृष्णा। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, हे प्रिय अर्जुन। अर्जुन को भगवान ने यह संदेश क्यों दिया? क्योंकि वो उनके प्रिय भक्त थे। भगवान कह रहे हैं, हे प्रिय अर्जुन। अर्जुन भगवान के सनातन साथी हैं। भगवद गीता में जब अर्जुन ने भगवान से सुना कि ये ज्ञान उन्होंने सबसे पहले सूर्य के देवता विवास्वान को दिया था, तो अर्जुन ने पूछा कि मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं कि ज्ञान आपने सूर्य के देवता विवास्वान को दिया था, जबकि उनकी आयु आपसे ज्यादा है। तो भगवान ने कहा, बहुत बहुत बार तुमने और मैंने जन्म लिया है, और मैं अपने सब जन्मों को याद कर सकता हूं और तुम नहीं। भगवान के अनेक नाम हैं, जिनमें एक नाम है अच्युता। वो कभी गलती नहीं करते, कभी कुछ भूलते नहीं। पर हम साधारण व्यक्तियों की तो याददाश्त इतनी कमजोर है कि 24 घंटे पहले भी हमने क्या किया हो हम भूल जाते हैं। तो भगवान ने अर्जुन से कहा है गीता में कि मैं ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे मित्र और भक्त हो, इसलिए तुम इस ज्ञान को समझ पाओगे। अर्जुन के द्वारा भगवान ये उपदेश आपको और हमें दे रहे हैं। अर्जुन के द्वारा ये उपदेश पूरे मानव समाज को दिया जा रहा है, और मानव समाज अगर गीता के आधार पर जीवन को बिताए, फिर उनका जीवन जो है सुखी बनेगा और सफल बनेगा। सुख, शांति, सुरक्षा, सफलता हर व्यक्ति चाहता है, चाहे आप मीरा रोड में हो या मुंबई में या विदेश में। हर व्यक्ति खोज रहा है सुख प्राप्त करने के लिए। समस्या यह है कि हम जानते नहीं कि असली सुख प्राप्त करने का साधन या माध्यम क्या है। तो भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, तो वेदों का अर्थ है भगवान की वाणी, और वैदिक शिक्षा को हम सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं। तो वेदों का कहना है कि मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है उसका दुरुपयोग मत करो, पर उसका सदुपयोग करो। मनुष्य जीवन हम भूल जाते हैं कितनी कठिनाई से प्राप्त होता है। हम भूल जाते हैं कि हजारों योनियों में गुजरने के पश्चात ये मनुष्य जीवन हमें प्राप्त होता है। जल की योनियों में हम सब गुजर चुके हैं, स्थावर योनि में गुजर चुके हैं, कीड़े की योनि में गुजर चुके हैं। आज आप कीड़े को देखते हो तो मार देते हो, दूर कर देते हो, पर हम भी इन योनियों में गुजर चुके हैं, पक्षी की योनि में गुजर चुके हैं और पशु की योनि में भी गुजर चुके हैं। और इन सब योनियों में गुजरने के पश्चात ये मनुष्य जीवन, दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और इस जीवन का हमें उपयोग करना चाहिए। वैदिक वेदों के द्वारा जो यज्ञ स्थापित किए गए हैं उनके पालन के लिए। समाज में अक्सर दो प्रकार के व्यक्ति प्राप्त होते हैं, एक जैसे यहां कहा गया है जो शास्त्र के विपरीत कार्य करते हैं केवल इंद्रिय तृप्ति या इंद्रियों की तुष्टि के लिए, और दूसरी तरफ वो व्यक्ति हैं जो कि इस जीवन का उपयोग करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत गीता के सातवें अध्याय में भगवान समझाते हैं कि चार प्रकार के व्यक्ति हैं जो कि उनकी शरण में आते हैं, और चार प्रकार के व्यक्ति हैं जो कि उनकी शरण में नहीं आते। जो नहीं आते उनको हम असुरों के नाम से जानते हैं, दुष्कृतना, और जो आते हैं उन्हें हम सूरों के नाम से जानते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो चार प्रकार के व्यक्ति आते हैं वो इस प्रकार से हैं, चातुर्विदा बजानते मां। किन स्थितियों में आते हैं? जिसे धन चाहिए हो, जो रोगी हो, पीड़ित हो, जिज्ञासु, और जिसके पास ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा वो ये समझता है कि मनुष्य जीवन की पूर्णता जब प्राप्त होगी जब हम वेदों के निर्णय को स्वीकार करें। फिर जिज्ञासु, फिर रोगी पीड़ित, और चौथा कौन था? हाँ, जिसे धन चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं कम बुद्धि के व्यक्ति देवताओं की शरण लेते हैं, पर जो वर देवताओं द्वारा प्राप्त होता है वो असल में मेरे द्वारा ही आ रहा है। इसलिए ब्रह्मा संहिता में ब्रह्मा जी स्थापित करते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि अनादि गोविंद सर्व कारण कारण। कहते हैं अनेक ईश्वर हैं पर सर्वश्रेष्ठ कौन है? हाँ, भगवान श्री कृष्ण वही है हर चीज के कारण। 33 करोड़ देवता देवियां हैं, सब उनके अधीन हैं, उनसे स्वतंत्र कोई नहीं, सब उनके अधीन हैं। तो चार स्थितियों में हम भगवान के शरण में आते हैं और चार प्रकार के व्यक्ति भगवान के शरण में नहीं आते। जो नहीं आते उनके विषय में भगवान कहते हैं न मम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदयाते नहादमा मायाया पार्थ ज्ञान अश्रम भवान अश्रित। सबसे पहले भगवान कहते हैं जो बहुत अधिक परिश्रम करते हैं मूढ़ों के समान, और इन व्यक्तियों से जब कहा जाता है कि आप कृपा करके आध्यात्मिकता में रुचि लो, जाप कीजिए, भगवान के गुणगान का कीर्तन, भगवान का गुणगान कीजिए, क्या कहते हैं ऐसे व्यक्ति? समय नहीं, समय नहीं है, बहुत काम है। हाँ, जैसे शास्त्र में उदाहरण दिया जाता है गधा बहुत बोझा उठाता है। हाँ, आप तो देखते हो सड़कों में लोग गधे से कितना काम लेते हैं, कई बार देखकर लोगों को तरस ना आ जाता है। हाँ, और गधे को अंत में क्या मिलता है? थोड़ा सा घास बस। तो इसी प्रकार कई असुर बुद्धि के व्यक्ति हैं जो सुबह से रात तक परिश्रम करते रहते हैं और आध्यात्मिकता का जब समय आता है तो यही कह देते कि हमारे पास समय नहीं है। फिर दूसरे कोटि का है नहाधमा। इनसे उन व्यक्तियों का वर्णन है जिनका बेशक समाज में बहुत ऊंचा स्थान हो, पर जब उनसे पूछा जाए भाई साहब जीवन का क्या उद्देश्य है, वो कहेंगे खाओ पियो जियो, भगवान में श्रद्धा नहीं रखते। जैसे आप लोगों को पता होगा, थोड़े महीने पहले एक भारतीय व्यक्ति जो अमेरिका में रहता है उसे नोबल प्राइज मिला था। आप लोग नोबल प्राइज क्या है जानते हो? नहीं? अच्छा, एक विश्व का एक बड़ा प्रसिद्ध इनाम है जो स्वीडन में दिया जाता है अलग अलग क्षेत्र में जो कि बड़े एक्सपर्ट हो जाए। तो एक भारतीय व्यक्ति है, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, जो अमेरिका में रहते हैं, जिनको नोबल प्राइज मिला है। तो भारतीय अखबारों में रोज ही उनका कुछ ना कुछ लेख आते रहता है उनके विषय में। पर हमारे ये नोबल लॉरिएट कहते हैं कि मैं तो भगवान में विश्वास नहीं करता। और अखबारों में वो हेडलाइन आई थी पिछले हफ्ते, हमने दिल्ली में पढ़ा, उस व्यक्ति के नाम के साथ, आई डोंट बिलीव इन गॉड। तो यहां देखो, भौतिक समाज में उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब उनको इतना आदर देते हैं जैसे किसी देवता को भी कोई नहीं देता, क्योंकि उसे इनाम मिल गया है। और हमारे ये प्रिय सज्जन कह रहे हैं हम तो भगवान में विश्वास ही नहीं करते। अरे भाई, आप भगवान में विश्वास नहीं करते, कोई चीज भगवान की प्रकृति के बिना प्राप्त हो सकती है? आपको खाने के लिए अन्न चाहिए, हाँ, अन्न कैसे पैदा होगा? अन्न टेक्नोलॉजी के सहयोग से तैयार नहीं हो सकता। अन्न जब प्राप्त होएगा, जब वर्षा आएगी और बारिश क्या आपकी टेक्नोलॉजी पैदा कर सकती है? नहीं कर सकती। बारिश आएगी यज्ञ के कारण। तो अंत में देखा जाए गहराई से, हर चीज परम भगवान पर निर्भर है। अगर हम आध्यात्मिक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो प्रकृति साथ नहीं देगी। जैसे कि आजकल हम समाज में देखते हैं, समाज का कष्ट, बोझा, दुख, परेशानियां बढ़ते जा रही हैं। सच बात है कि मीरा रोड के इलाके में घट रही हैं। सब जगह जहां हम जाते हैं सब कहते हैं समाज, स्वामी जी आज समाज की स्थिति पहले 10 साल पहले से 100 गुना ज्यादा बिगड़ गई है। भागवत में कथा पढ़ते हैं, हजारों साल पूर्व एक राजा था। राजा में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं थी, अहंकार था। राजा का नाम था महाराज वेना। उन्होंने समाज में सारे यज्ञों को रुकवा दिया था। अगर कोई ब्राह्मण दिखता था तो उसे कहते थे तो मेरी पूजा करो, विष्णु की पूजा क्यों करते हो? क्योंकि उन्होंने सब यज्ञ इत्यादि रुकवा दिया था। आस्ते आस्ते प्रकृति ने साथ नहीं दिया और ये परिणाम हुआ कि समाज की जो आवश्यकताएं थी वो प्रजा को प्राप्त नहीं हुई। खेती से फसल नहीं निकली, पेड़ों से फल नहीं निकले, समुद्र का जो पानी है आस्ते आस्ते सूखा हो गया और प्रजा जो थी बहुत परेशान हो गई। जैसे आज की प्रजा बेचैन है, परेशान है, चाहे एक दल का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने या दूसरे दल का, कुछ ज्यादा फर्क तो शायद नहीं पड़ता है ना। जो समाज की परेशानियां हैं वो तो केवल बढ़ते ही जा रही हैं। तो फिर उस समय समाज में शुद्ध ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के पास ये योग्यता थी कि वो आग को भी पैदा कर देते थे माचिस को जलाए बिना मंत्रों के उच्चारण से। तो उन ब्राह्मणों ने देखा कि समाज की प्रजा बहुत दुखी हो गई है। ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार समाज का विभाजन होना चाहिए चार वर्णों में और चार आश्रमों में। जिस प्रकार आपके शरीर में सिर भी है, हाथ भी है, पेट भी है और पैर भी है, उसी प्रकार समाज में ब्राह्मणों का होना, क्षत्रिय का होना, वैश्य का होना और शूद्रों का होना अवश्य है। ब्राह्मणों की तुलना की गई है सिर के साथ, क्षत्रियों की तुलना की गई है हाथ, वैश्यों की तुलना की गई है पेट के साथ और शूद्रों की तुलना की गई है पैर के साथ। जिस प्रकार पैर पूरे शरीर के बोझे को उठाता है, शूद्रों का कर्तव्य बनता है कि वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मणों का सहयोग दें। ब्राह्मणों की तुलना की गई है सिर के साथ। आप कई बार आपने देखा होगा लंगड़े व्यक्ति को, अंधे व्यक्ति को, हाथ के बगैर, पर आपने कभी देखा है किसी को सिर के बिना? हाँ, किसी व्यक्ति को चलते हुए देखा है सिर के बिना या नकली सिर के साथ? नहीं, असंभव है। तो जैसे ये असंभव है उसी प्रकार समाज का ब्राह्मणों के बिना रहना भी असंभव है। ब्राह्मणों की आवश्यकता है, परिषद ब्राह्मणों की। ये नहीं कि हमने जेनू पहन लिया बाजार से, क्या भाव है जेनू का आजकल? चार आना आठ आना, 50 रुपए का जेनू पहन लिया और हम ये कहें, दावा करें कि हम ब्राह्मण हैं। नहीं, ब्राह्मणों के गुण होने चाहिए। और जो शुद्ध ब्राह्मण हैं वो लालची नहीं होते, उनमें त्याग की भावना होती है। राम राज्य के समय भगवान रामचंद्र जी ने और सीता देवी जी ने सारे गहने ब्राह्मणों को बांट दिया था। ब्राह्मणों ने स्वीकार किया, स्वीकार करके वापस राजा को भेंट के रूप में अर्पण कर दिया। ये था उनका त्याग। आज अब ब्राह्मणों को दो कुछ और देख लो वापस मिलता है तो तो इन ब्राह्मणों ने देखा कि महाराज वेना के अत्याचार भावना के कारण पूरी प्रजा दुखी हो रही है, तो उन्होंने श्राप दिया और फिर उनके बेटे पृथु महाराज राजा बने। जब उनके बेटे पृथु राजा बने तो प्रजा वहां पहुंची उनके महल में। आजकल तो आप कभी समाज के आपके राजनीतिक नेताओं को मिल सकते हो? नहीं। आप प्रधानमंत्री को मिलना चाहो तो मिल सकते हो? नहीं। अमेरिका जाओ और कहो हम राष्ट्रपति क्लिंटन से मिलना चाहते हैं, आपको मिलने देंगे? कहेंगे टेलीविजन के सामने बैठ जाओ, वहां मिल लेना। पर शेक हैंड करके नहीं मिल सकते, है ना? आपको प्रधानमंत्री को मिलना तो कहेंगे हाँ टेलीविजन में समाचार के समय प्रधानमंत्री से मिल लेना, पर उनको मिल नहीं सकते। पर प्राचीन समय में कोई भी नागरिक राजा के महल में पहुंच सकता था, घंटी बजाकर अपनी समस्या सुनाता था और राजा तुरंत ही उसे हल कर देता था। अगर आज ऐसी स्थिति होती तो आप सब ज्यादा संतुष्ट होते नहीं? तो पृथु महाराज के महल में उनके पास पूरी प्रजा पहुंची और कहने लगी, हे राजा, तुम्हारा यह कर्तव्य बनता है, अरे वो बच्चों को मैं चुप करूं, तुम्हारा यह कर्तव्य बनता है कि तुम हमारी आवश्यकताओं को पूरा करो। तो राजा ने कहा, मेरे पास तो कोई योग्यता नहीं है, पर अगर तुम भगवान का गुणगान करोगे तो तुम्हारी सब आवश्यकता पूरी हो जाएगी। और पूरी प्रजा ने भगवान का गुणगान आरंभ किया और जो आवश्यकताएं थी सब प्राप्त हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमें भौतिक सफलता भी चाहिए तो हमें किसी न किसी रूप से परम भगवान के शरणागत होना चाहिए। तो ये जो नराधमा हैं, जिनका समाज में बहुत ऊंचा स्थान है, पर जब इन व्यक्तियों से पूछा जाता है कि जीवन का क्या उद्देश्य है तो वो उत्तर नहीं दे पाते, ठीक उत्तर नहीं पाते। उत्तर तो देंगे पर गलत, शास्त्र के विपरीत उत्तर दे पाते हैं। फिर मायाया पर्थ ज्ञान, इनसे उन व्यक्तियों का वर्णन है जिनके पास भौतिक ज्ञान है पर भौतिक ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे कि कईयों ने संस्कृत का अध्ययन किया, फिर संस्कृत का अध्ययन करके वेदों को अनुवाद किया और भाव बिल्कुल बदल दिया। एक जर्मन व्यक्ति था ईसाई, तो उसने देखा कि ये वैदिक शास्त्रों का संदेश इतना गहरा है, तो उसने क्या किया, ये इरादा बनाया कि वैदिक शास्त्रों का जो असली उपदेश है उसको कंफ्यूज कर दिया जाए। तो पहले तो उसने कई सालों के लिए संस्कृत पढ़ी, संस्कृत पढ़ के नाम कमाया, फिर उसने ईशोपनिषद वगैरह सबका अनुवाद किया और पूरा भाव बदल दिया। और हम कहते हैं अरे ये देखो बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ऐसे अनेक पीएचडी मिलेंगे जो गीता को भी पकड़ेंगे और गीता में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश के बजाय भगवान के श्लोकों के पीछे अपने भावों को जोड़ देंगे, तो उनसे बचकर रहना चाहिए। जैसे कि भगवद गीता यथारूप, इसके इसके वितरण के द्वारा आज लाखों लाखों व्यक्ति बने हैं सारे विश्व में। क्यों? क्योंकि यहाँ असली संदेश दिया जा रहा है। मायाया पर्थ ज्ञान आश्रम भवान आश्रितः, इससे तो उन व्यक्तियों का वर्णन है जो स्वयं स्पष्ट नास्तिक हैं, भगवान में विश्वास नहीं करते, कहते हैं भगवान नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं इत्यादि। जो चार प्रकार के व्यक्ति भगवान की शरण में आते हैं, चार प्रकार के व्यक्ति नहीं आते। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए जी रहा है वो तो व्यर्थ में जी रहा है, बेकार में। दूसरे शब्दों में भगवान कह रहे हैं कि अगर मानव जीवन प्राप्त करके आपने केवल इंद्रिय तृप्ति के कार्य में ही जुड़े रहना है तो इस जीवन में और जानवर के जीवन में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए कहा गया है यज्ञ का पालन करो। भगवद गीता के 12वें अध्याय में, 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। तो इस अध्याय में भगवान कहते हैं सदा मेरा चिंतन करो। भगवान का चिंतन करना इस युग में इतना सरल नहीं है, निरंतर चिंतन करते रहना। अर्जुन ने तो भगवान से कहा था मन को वश में लाना वायु को वश में लाने से भी ज्यादा कठिन है। वायु को वश में लाना सरल नहीं है, कठिन है, पर मन को वश में लाना इससे भी ज्यादा कठिन है। ये कहा था अर्जुन ने, मन ढीठ है, चंचल है, रोज आप सुनते हो क्या करना चाहिए क्या नहीं, मन जब भी उसे स्वीकार नहीं करता। तो भगवान आगे कहते हैं
कि अगर तुम मन के द्वारा सदा मेरा चित नहीं कर सकते तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। भक्ति योग के विधि विधानों के पालन के द्वारा तुम्हारे में ये चाह उत्पन्न होगी मुझे समझने के लिए। तो भगवान जब कहते हैं विधि विधानों का पालन, तो उसका क्या अर्थ? उसका ये अर्थ है कि जो भक्ति योग के जो नियम हैं, जो विधि विधान जिनका ज्ञान हम शास्त्रों में प्राप्त करते हैं, अगर हम उसके आधार पर चलेंगे फिर हम इस जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे, फिर हम असली संतुष्टि प्राप्त कर सकेंगे। आज देखा जाए धर्म प्रेमियों, समाज में भौतिक सुविधाओं की कमी नहीं है, ये तो मानोगे। जैसे कि यहां बैठे बैठे आप घर जाओगे, आपके पास HD STD है तो एक मिनट में आप गुजरात दिल्ली बॉम्बे किधर भी बात कर सकते हो। सच बात है, आपके पास ISD है तो अमेरिका भी बात कर सकते हो एक मिनट में। एक जमाना था जब आपको टेलीफोन करनी होती थी अमेरिका, तो आपको बुक करना पड़ता था कॉल, फिर 8 घंटे बाद मिलता था। अभी देखो एक मिनट में आप अमेरिका बात कर सकते हो। सच, एक मिनट में आप अमेरिका का चैनल अपने टेलीविजन में पकड़ सकते हो। तो कितनी सुविधाएं हैं, आप रोज भारत की सड़कों में कोई ना कोई नई मोटर देख रहे हो। हाँ, आज ये मोटर कल वो मोटर। तो एक रूप से देखा जाए भौतिक सुविधाएं तो आजकल बहुत है, फैक्स है, कॉम है। पिछले हफ्ते हमें एक हमारी संस्था का सदस्य मिलने आया दिल्ली में, कहते स्वामी जी मैं आपको एक भेंट देना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? अभी मेरा पास नया इक्विपमेंट आया है जिसको आप अपनी टेलीफोन में लगाओगे तो जिससे आप बात कर रहे हो उसके चेहरे को भी देख सकते हो। उसके घर में वो इक्विपमेंट हो और आपके पास वो इक्विपमेंट हो तो आप उससे अगर फोन में बात कर रहे हो तो वो आपको देख सकता है और आप उसको देख सकते हो, जैसे टेलीविजन में देखते हो। और वो इंस्ट्रूमेंट महंगा भी नहीं है, 80,000। सेठ लोगों के लिए 80,000 क्या है, कुछ ज्यादा नहीं है। तो कह रहा था मैं आपको वो भेंट देना चाहता हूँ। मैंने कहा भेंट दो भी दोगे तो इसे हम करेंगे क्या? तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि हमारे वैज्ञानिक बहुत प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि वो नफा कमाएं, आपका उल्लू बनाएं, आपको ये विश्वास दिलाएं कि नहीं नहीं तुम आगे बढ़ रहे हो। क्या इन सब सुविधाओं के कारण मानसिक कष्ट, भौतिक कष्ट, शारीरिक कष्ट कम हो गया है? नहीं। क्या आप इंद्रिय तृप्ति के कार्यों के द्वारा अपने आप को संतुष्ट कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। शास्त्रों में, भागवत में खास करके उदाहरण दिया जाता है किस प्रकार अनेक पशु उनका देहांत हो जाता है इंद्रियों को संतुष्ट करने के प्रयास में। जैसे कि मछली जो है, मछली को खाने का लालच रहता है, जितना भी खा ले पी ले कम दिखता है। तो जो मछली पकड़ने जाते हैं तो कैसे उसको आकर्षित करते हैं? हाँ, मछली सोचती है कुछ खाने के लिए मिलेगा। हाँ, तो जाती है वहां और फंस जाती है। सच बात है। तो इसी प्रकार हिरण, हिरण को फंसाना हो तो क्या करते हैं? उसमें कमजोरी है हिरण में कि जब वो एक खास धुन सुनता है तो भागना बंद कर देता है। तो चापलूसी शिकारी क्या करते हैं? वो धुन को पैदा करते हैं तो हिरण रुक जाता है, सुनने के लिए कहां से आ रहा है, और इतने में गोली चला देते हैं या तीर चला देते हैं। हाथी, हाथी को पकड़ना इतना आसान नहीं है,
तो वो हाथी को सिखा देते हैं, वो हाथनी को सिखा देते हैं कि हाथी को कैसे फंसाओ। तो बेचारा हाथी हाथनी का पीछा करता है भोग विलास के लिए, वो रास्ते में एक खड्डा होता है जिसको ढक देते हैं घास के साथ। तो हाथी जब उस खड्डे के ऊपर पांव रखता है तो गिर जाता है और शिकारी उसे फिर पकड़ लेता है। मधुमक्खी फूल कमल के फूल में बैठती है, शाम को जब फूल बंद होता है तो उसमें फंस जाती है। आप भी पतंगे देखते हो, जाते हैं बिजली की तरफ और उसकी जल जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। तो इस प्रकार जैसे अनेक पशु इंद्रियों को संतुष्ट करने के प्रयास में नष्ट हो जाते हैं, हमारे कि अगर हम भी केवल इसी प्रकार से इंद्रियों को संतुष्ट करने जाएं तो हमारा भी अंत आ जाएगा। आज तो समाज की प्रजा इतनी आलसी है आध्यात्मिक विषयों में कि जब उन्हें कहा जाता है कि इसका क्या परिणाम होगा तो वो क्या कहते हैं, ठीक है भुगत लेंगे उसमें क्या। एक समय एक शराबी था, तो उसके एक मित्र ने कहा, अरे भाई तुम इतनी शराब पीते हो नरक में जाओगे। तो कहने लगा, मेरे पिताजी भी शराब पीते हैं, वो भी नरक में जाएंगे। मेरा भाई भी शराब पीता है, वो भी नरक में जाएगा। और दो तीन मित्रों का नाम ले लिया, वो भी शराब पीता है, वो भी नरक में जाएगा। तो जब उसने सुना कि ये सब नरक में जाएंगे तो कहने लगा, वे तो नरक स्वर्ग है, हम सब एक साथ होंगे और हम एक साथ पिएंगे। तो उसी प्रकार आज समाज में स्थिति ऐसी है कि अगर लोगों को कहा जाए कि ये इसका इसका ये परिणाम होगा तो वो कहते हैं ठीक है होने दो, उसमें क्या, पशु बन जाएंगे, कुत्ते बिल्ली बन जाएंगे। जैसे जो मांस वगैरह खाते हैं तो उन्हें हम कभी समझाते हैं, अरे भाई भौतिक दृष्टि से ये खराब है। विज्ञानी भी कहेंगे कि अनेक बीमारियां आती हैं मांस के कारण, और दूसरा आध्यात्मिक दृष्टि से आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप किसी का जीवन लो तो आपको भी भरना ही पड़ेगा, जीव जीव से जीव। तो वो कहते हैं ठीक है हम बिल्ले कुत्ती बन जाएंगे। अगर आप बनने को तैयार हो, सजा भुगतने को तैयार हो तो जो करना करो। अगर आपको भय नहीं है कि आपको शायद जेल में जाना पड़े तो आप चोरी कर लो, जान से चोरी करना। पर लोगों की बुद्धि इतनी गिर गई है कि आज अगर उनको कहां भी जाए जागो जागो, वो कहते हैं अब नहीं, बाद में, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि बेकार में जीवन मत बिताओ, पर ये जीवन का उपयोग करो। किस लिए? जो यज्ञ चक्र जो स्थापित हुए वेदों के द्वारा उनका लाभ उठाने के लिए। आपने देखा होगा कि इस संस्था के द्वारा जो भी उपदेश दिया जाता है आपको वो शास्त्र पर आधारित है। श्रील प्रभुपाद इस संस्था के संस्थापक आचार्य, आप अगर उनके तात्पर्यों को पढ़ो
उनके प्रवचनों को सुनो तो ये देखोगे कि केवल शास्त्र पर आधारित है। अर्जुन ने ये कहा, भगवान ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने ये कहा, परीक्षित महाराज ने ये पूछा, कभी प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा मेरे विचार से ऐसा होना चाहिए। आज हम देखते हैं धर्म के अनेक प्रचारक हैं, पर वो क्या कहते हैं, हमारे विचार से ऐसे होना चाहिए। धर्मांतम साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी। हम केवल भगवान की वाणी को ही स्वीकार करते हैं। शास्त्र का अर्थ है भगवान की वाणी, जैसे भगवत गीता जो आप पढ़ते हो सुनते हो। देखिए भगवान ने उपदेश दिया था करोड़ों साल पहले, आज भी आप ये उपदेश पढ़ते हो। पिछले महीने आप जानते होंगे कि दिसंबर के महीने में, खास करके जिनका इस्कॉन संस्था से संबंध है, कि दिसंबर के महीने में हम प्रयास करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में ग्रंथों को बांटने के लिए। और पिछले महीने सब भक्तों ने मिलकर, आप सब भक्तों के सहयोग से 1,75,000 गीता बांटी 30 दिन के अंदर। 1,75,000 गीता, लगभग 6,000 गीता दिन में बांटी। हाँ, और मीरा रोड की जो पार्टी है वो पहले नंबर पर आई, कल उनको इनाम मिला था। तो आज भी लोग ये गीता पढ़ रहे हैं, जो गीता हजारों साल पहले लोग सुनते थे, लाखों साल पहले, आज भी गीता लोग पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि इस गीता के ज्ञान के द्वारा मन शांत होता है और हम हर प्रकार के समस्या का को हल कर सकते हैं। तो भगवान का ये कहना है कि जो ज्ञान स्थापित किया गया है वेदों में, उसके आधार पर हमें चलना चाहिए। तो अगला प्रश्न आपका ये हो सकता है, स्वामी जी आप कह रहे हो कि वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन करना चाहिए, तो क्या स्थापित किया गया है इस कलियुग के लिए? ठीक है ना, तो कलियुग में कहा गया है, जैसे आप सब जानते हो, कि भगवान के नामों में भगवान ने पूरी शक्ति डाली हुई है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नस्ते व नस्ते व नस्ते व एव गति अन्यथा। चैतन्य महाप्रभु जी से तो आप सबका परिचय है, सब जानते हो चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में। कौन है चैतन्य महाप्रभु जी? हाँ, स्वयं भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि इस कलयुग में भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली हुई है। उनके नामों में, उनमें कोई अंतर नहीं है, और जिसे भी चैतन्य महाप्रभु जी मिलते थे उनके द्वारा ये हरे नाम का उच्चारण करवा देते थे। एक समय चैतन्य महाप्रभु जी एक जंगल से गुजर कर जा रहे थे, जंगल में तो केवल पशु ही होते हैं, मानोगे नहीं, उन्होंने पशुओं को भी नचवाया और उनसे भी हरे नाम करवाया। आप में हमारे में तो ये योग्यता नहीं है, पर वो स्वयं भगवान थे तो वो करवा सके। ये तो इस कलयुग में यज्ञ का एक साधन यह है कि हम किसी न किसी रूप से भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करें। एक प्रसिद्ध भक्त गोविंद दास जी कहते हैं कि जो मनुष्य जीवन है किसी समय भी समाप्त हो सकता है। उदाहरण देते हैं, जैसे कि पानी का बूंद एक कमल के पत्ते पर हो, किसी समय भी वो बूंद नीचे गिर सकता है, सच बात है। तो उसी प्रकार उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन किसी समय भी समाप्त हो सकता है, किसी समय भी। तो हमें सदा सावधान रहना चाहिए। जैसे कि अगर आप बर्फ पर चल रहे हो, अगर सावधानी से नहीं चलोगे तो फिसल जाओगे और हड्डी टूट जाएगी। कई लोग बर्फ में स्कीइंग करते हैं, स्कीइंग आपने सुना है, स्कीइंग बर्फ में दौड़, एक तो स्कीइंग करते वक्त कई बार गिर जाते हैं और हड्डी टूट जाती है। तो वो कहते हैं कि जीवन किसी समय भी समाप्त हो सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए, बाजा हरि पादा, हरि की शरण लेनी चाहिए। तो कि हरि की शरण लेंगे हम कैसे, आप लोगे इस हरि नाम के द्वारा, चरणम कीर्तन, नवदा भक्ति का ज्ञान देते हैं वो। ये ज्ञान सबसे पहले प्रहलाद महाराज जी ने दिया था। तो इसीलिए हम आप भक्तों से सदा यही विनती करते हैं कि किसी न किसी रूप से हरि नाम का जाप आप लोग जरूर करो, सुख में या दुख में, दोनों स्थितियों में हरि नाम को स्वीकार करना चाहिए। हमने आज के प्रवचन से पहले एक महान संत के द्वारा रचित किया हुआ भजन यशोमती नन्ना गाया था, इसकी रचना की थी एक महान संत जिनका नाम है ठाकुर भक्ति विनोद। भौतिक दृष्टि से तो ठाकुर भक्ति विनोद जी बहुत पड़े हुए थे, अंग्रेजों के समय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, उनसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बहुत जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार ने सौंपी हुई थी उन पर वो साथ में भगवान के भक्त भी थे, बड़े प्रिय भक्त। ऐसे तो उन्हें चैतन्य महाप्रभु जी की दिव्य शक्ति के अवतार माना जाता है। तो उन्होंने एक रचना में कहा है, सुख में या दुख में, दोनों स्थितियों में हरि नाम को जरूर जरूर जोड़ के रखो। अक्सर हम क्या देखते हैं कि सुख में हम भगवान का स्मरण नहीं करते, सच बात है, दुख में करते हैं। जैसे आप इन कार्यक्रमों में धनी व्यक्तियों को ज्यादा नहीं देखते, हाँ देखते हो कभी कभी आ जाए मथा टेकने के लिए, पर आपके साथ बैठकर प्रवचन वगैरह तो बहुत कम सुनेंगे, सच बात है, क्योंकि सुख है, सोचते हैं कि धन के द्वारा हर आवश्यकता पूरी हो जाएगी, मुझे किसके सहयोग की क्या आवश्यकता। पर ठाकुर भक्तिनाथ जी कहते हैं, सुख में और दुख में, दोनों ही स्थितियों में हरि नाम का जाप करो, ये मत भूलो कि ये जीवन किसी समय भी समाप्त हो सकता है, ये मत भूलो। तो कहते हैं ये मनुष्य जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, पर भगवत प्राप्ति के लिए उपयोग करो। शास्त्रों में संतों के द्वारा ये ज्ञान मिलता है कि इंद्रियों को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, इसीलिए आप भौतिक समाज में देखते हो, पश्चिम देशों में खास करके पूरी आयु में भी ये प्रयास नहीं छोड़ते इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। 80 साल के हैं पर $1,000 खर्चेंगे नाइट क्लब में जाने के लिए, कि यही सोचते हैं कि इंद्रियों को ये नाइट क्लब में जाकर संतुष्ट कर पाएंगे, पर आप इंद्रियों को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। तो पर उन्हें आप संतुष्ट कर सकते हो अगर आप किसी प्रकार इंद्रियों को भगवान के सेवा में उपयोग करो। भगवान ने आपको नेत्र दिए हैं, कान दिए हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, नाक दिया है, सिर दिया है, अनेक इंद्रियां दी हैं और अनेक अंग दिए हैं, इन सब का उपयोग करो। नेत्रों का उपयोग करो भगवान का सुंदर विग्रह का दर्शन प्राप्त करने के लिए, और आपके इस मीरा रोड के मंदिर में राधा गिरधारी जी की खूबसूरत मूर्तियां हैं और साथ में जगन्नाथ जी की डबल दो दो जोड़ी मूर्तियां हैं, हाँ, छोटी और बड़ी। तो आंखों के द्वारा उनका दर्शन लो। जीभ के द्वारा क्या करना चाहिए आपको? फिल्मी धुनों का उच्चारण, हाँ, रेस्टोरेंट में जाके खाना चाहिए? जीभ के द्वारा भगवान का गुणगान करो, भगवान के दिव्य चर्चा करो और कृष्णा प्रसाद स्वीकार करो। कृष्णा प्रसाद स्वीकार करोगे तो मन और इंद्रियां सब शुद्ध बनने लग जाएंगे, और प्रसाद नहीं साधारण खाना खाओगे तो बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। इसीलिए हम यही विनती करते हैं, कृष्णा प्रसाद स्वीकार करो। कानों द्वारा क्या करना चाहिए? भगवान का गुणगान करना चाहिए। पैरों द्वारा क्या करना चाहिए? भगवान के मंदिर चल के जाओ, या अगर मोटर में आना है तो पैरों से मोटर चला कर आओ। हाथों से क्या करना चाहिए? भगवान के मंदिर में सेवा करो, या मंदिर आके साफ भी कर दो, उसमें क्या। प्राचीन समय में एक राजा थे अमरीश महाराज, हाथों से रोज भगवान का मंदिर साफ करते थे। 500 साल पहले तक एक राजा थे उड़ीसा के, जिनका नाम था महाराज प्रताप रुद्रा। भगवान जगन्नाथ जी का रथ आरंभ होने से पहले सड़क में जाकर झाड़ू देते थे। क्यों नहीं, जब भगवान वहां से चलेंगे तो भक्तों का कर्तव्य बनता है कि भगवान बिल्कुल साफ रास्ते से चलें। तो भक्ति योग की विधियों का पालन करना कठिन नहीं है। शुरू में दिखता है कठिन, जैसे 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि तीन प्रकार की खुशी आप प्राप्त कर सकते हो, सात्विक खुशी, राजसिक खुशी और तामसिक खुशी। सात्विक खुशी के विषय में कहते हैं शुरू में वो कड़वी होती है, बाद में मीठी, और जिसके द्वारा आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान बढ़े, वो तो है सात्विक खुशी। और राजसिक खुशी क्या है? जो शुरू में कड़वी होती है, नहीं, शुरू में मीठी दिखती है, बाद में कड़वी हो जाती है, और जो प्राप्त होती है इंद्रिय तृप्ति के कार्य के द्वारा। तो राजसिक खुशी शुरू में मीठी होती है, बाद में कड़वी, और सात्विक शुरू में कड़वी बाद में मीठी। जैसे कि जब आपसे कहा जाता है जप करो, गीता पढ़ो, सेवा करो, तो शुरू में तो आपका मन कहता है कहां फंस गए हम, कहां गलती से पहुंच गए, अब नहीं करें तो भी भय है पाप हो जाएगा, और करें तो सिनेमा टेलीविजन के लिए समय नहीं मिलेगा। तो शुरू में तो कड़वा दिखता है, सच बात है। पर जैसे आप करते हो सेवा, आस्ते आस्ते आनंद संतुष्टता बढ़ते जाती है, और बाद में यही कड़वापन मीठा बन जाता है, सच बात है। आप सबका अभ्यास होगा, खास करके जो भक्त आज सोना माला कर रहे हैं, जो बकायदा आते हैं, इन अनेक भक्तियों की विधियों का पालन कर रहे हैं, वो तो बता सकते हैं कि शुरू शुरू में बेशक भय था, पर इन नियमों के पालन से आस्ते आस्ते ये भय जो है दूर हो गया। तो भगवान का यही कहना है इस श्लोक में कि हे मेरे प्रिय अर्जुन, कि जो व्यक्ति मानव जीवन प्राप्त करके शास्त्र के विपरीत कार्य करता है वो तो बेकार में जी रहा है। अब आप सबके विषय में हम ये कह सकते हैं कि आप बेकार में नहीं जी रहे। आप अगर बेकार में जी रहे होते तो आप क्यों यहां आते आज? आप यहां आ रहे हो बकायदा क्योंकि आपकी अध्यात्मिकता में रुचि है। एक माली बीज को बोता है तो बीज उगता है कैसे? क्या करके? पानी पिलाकर। तो उसी प्रकार भक्तों की संगत में आकर आपके हृदय में
भक्ति का बीज प्राप्त होता है। अब ये भक्ति के बीज को उगना चाहिए। और ये भक्ति का बीज कैसे उगेगा? उगेगा श्रवणम कीर्तनम के माध्यम के द्वारा। जब आप उच्चारण भगवान के नामों के उच्चारण के द्वारा इस बीज को पानी पिलाओगे तो ये बीज उगेगा। जब ये बीज उगेगा फिर बीज से वो पेड़ बनेगा। पेड़ में क्या पैदा होते हैं? फल। तो ये भक्ति का पेड़ भी जब उगेगा तो फल पैदा होंगे। और ये कहा गया है कि जो व्यक्ति भी इस फल को चाखेगा, खाएगा, उस व्यक्ति को क्या प्राप्त होगा? जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा, छुटकारा प्राप्त होगा। तो आप सब ये फल काटना खाना चाहते हो या आपको जन्म मृत्यु का चक्र ज्यादा सुंदर दिखता है? हाँ, क्या चाहते हो आप लोग? ये भक्ति की पेड़ का फल खाना चाहते हो या माया के पेड़ का फल? तो अगर भक्ति के फल का पेड़ खाना चाहते हो तो आप सबको ये पेड़ को पहले उगाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि नहीं नहीं ये तो पेड़ तो उग गया, फल भी हमने खा लिया, हजम भी हो गया, आपको ये पेड़ उगाना पड़ेगा। पेड़ उगाने के लिए थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा। प्रयास ये होगा कि गलत कामों से समय निकालकर अच्छे कामों में डाल दो। भगवान ये नहीं कहते घर छोड़ो, धंधा करो, छोड़ो नौकरी छोड़ो। ये जरूर कहते हैं कि जो करो मेरी खुशी के लिए करो और सदा मेरा चिंतन करते रहो और कर्मों के नतीजे को मुझे अर्पण करो। यत करोषि यद स्नेहासि यह जोषि ददासि यत यत तपस्वति कौन्ते तत् कुरुष्व अर्पणम्। जो खाना है मेले खाओ, जो दान देना है मेले करो, जो यज्ञ करना है मेले करो, जो तपस्या करनी है वो भी मेरी खुशी के लिए करो। भगवान कह रहे हैं आपको और हमें कि हर कार्य के पीछे ये भाव रहना चाहिए कि ये कार्य जो किया जा रहा है भगवान की खुशी के लिए किया जा रहा है। तो हम आज आए हैं आपको ये संदेश देने के लिए कि जो भी आप कार्य करो आप कृपा करके कीजिए विष्णु की प्रशंसा के लिए। और ये भक्ति का जो बीज है ये उगेगा, फिर से फल पैदा होगा अगर आप बकायदा श्रवणम कीर्तनम कर देगा। भगवान का नाम सुनो, भगवान का नाम लो और भगवान के शास्त्रों को पढ़ो। हम रोज रात को न्यूज देखते हैं, हम लोग तो नहीं देखते पर साधारण व्यक्ति खबर देखना चाहता है, अखबार पढ़ते हो, ये भी पढ़ो, गीता पढ़ो, भगवतम पढ़ो। चैतन्य महाप्रभु जी ने तो बहुत सरल साधन दे दिया है, उन्होंने 5 विधियों का पर बल दिया। एक हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, हर व्यक्ति इसका जाप कर सकता है। खास करके भारत देश में तो आप बचपन से ही हरि नाम की महिमा सुनते आए हो, ये तो कोई बनावटी मंत्र नहीं है। थोड़े दिन पहले हमें एक सज्जन मिले तो हमने उनसे पूछा, उनसे ये विनती की कि आप ही हरि नाम कीजिए। उन्होंने कहा कि हमारी तो दीक्षा हो गई स्वामी जी। आपने कहा बड़ी अच्छी बात है, आपको मंत्र का उच्चारण तो करते होंगे। हाँ, पर वो गुप्त मंत्र है, वो हम किसको बोल नहीं सकते, हम उनको बता नहीं सकते। अरे भाई क्यों नहीं बता सकते? भगवान का जो गीता का उपदेश है ये क्या गुप्त है? पूरे समाज के लिए है। तो हरि नाम के विषय में ये तो आप जानते हो कि प्रमाणिक है, असली चीज है, इसमें तो कुछ बनावटीपन नहीं है। आज अनेक धार्मिक संस्थाएं हैं जहां की जो आचार्य हैं वो भगवान बन गए हैं। शिष्य कहते हैं हमारे गुरु तो भगवान हैं। तो जब उनके गुरु से पूछा जाए भगवान है, कहते हैं हम थोड़ी कहते हैं हम भगवान है, वो तो शिष्य कहते हैं। तो हम नहीं कहते भगवान है, शिष्य कहते हैं भगवान है। और उनके मंदिरों में जाओ भगवान की तस्वीर के बजाय उन गुरु जी की तस्वीर है सब जगह, है ना, चारों तरफ। पर हम तो राधा कृष्ण की उपासना करते हैं,
उसमें तो कोई शंका नहीं है। ये तो सब जानते हैं कि ये परम भगवान है। गीता में भी लिखा गया है श्री भगवान उवाच, भगवान उपदेश दे रहे। हम आपको ये तो नहीं कह रहे कि एक नई चोपड़ी लिखी है गुरु जी ने वो पढ़ो। ये तो भगवत गीता पूरा विश्व इसे स्वीकार करता है। तो इन चीजों में तो कुछ गलती का कुछ भय है ही नहीं। साथ में हम ये कहते हैं गलत काम छोड़ दो, उसमें तो कुछ नुकसान नहीं है। और अंत में जो हरि नाम करोगे, गीता पढ़ोगे, सेवा करोगे, इसका लाभ किसे पहुंचेगा? हाँ, ये अपने स्वार्थ के लिए है। जो व्यक्ति पशुओं के समान इंद्र तृप्ति के कार्य में जुड़ जाते हैं वो तो मूर्ख हैं। असली बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? आप सब। भव नाम जन्म नाम अंते ज्ञान माम प्रबदे वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ सा महात्मा सुदुर्लभ। तो आप सब समाज के साधारण नागरिक नहीं हो, आप सब तो हो महात्मा भक्त, क्योंकि आपने ये निर्णय कर लिया है कि हमने भगवान के शरणगत होना है। और हम भक्तों का ये कर्तव्य है आपका सहयोग करना, आपको प्रेरणा देनी। और कैसे देंगे सहयोग? भगवान की वाणी, महान आचार्यों के उदाहरण, उनका उपदेश बार बार सुनाकर। जितने ध्यान से सुनोगे, जैसे कि भौतिक स्थिति में आप दवाई स्वीकार करते हो मुंह के द्वारा, आध्यात्मिक दवाई हम स्वीकार करते हैं कानों के द्वारा। जितने सावधानी से भगवान का गुणगान करोगे, जितने सावधानी से भगवान का उपदेश सुनोगे, उतना ही इसका परिणाम होगा। तो आप सब धर्म प्रेमियों के में भारी हैं कि आप इधर आए हो, पर आप सबसे यही विनती है कि आप गीता के इस श्लोक के भाव, उद्देश्य, तात्पर्य को गंभीरता के साथ स्वीकार कीजिएगा। भगवान बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मानव जीवन प्राप्त करके वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वो तो बेकार में जी रहा है। आप बेकार में तो नहीं जीना चाहते, कुछ प्राप्त करने के लिए जीना चाहते हो। और तो इसलिए ये अवश्य है कि आप हरि नाम को जप करो, हर गीता भगवतम को पढ़ो, भक्तों की संगत का लाभ उठाओ, भगवान के आर्च विग्रह की पूजा करो। आर्च विग्रह की मूर्तियां नहीं रख सकते घर में, तो मूर्तियों की तस्वीर रखो। और इस प्रकार आध्यात्मिक भक्तों की संगत का लाभ उठाओ और इस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाओ। हमें भूलना नहीं चाहिए ये जीवन किसी समय भी समाप्त हो सकता है। भगवान गीता में कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्ता तन्नश्यति। हे अर्जुन, तुम सुना दो सबको क्या कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। जैसे आजकल आप लोग देखते हो ना, कई बार कोई प्रसिद्ध फिल्मी कलाकार या खिलाड़ी कहता है ये वस्तु खरीदो, ये अच्छी वस्तु है, तो हम खरीदते हैं। हम कहते हैं अगर ये खिलाड़ी ने कहा है तो अच्छा होएगा ही। हालांकि हम सब जानते हैं खिलाड़ी को तो पैसा दिया गया है कहने के लिए, पर वो कोई नहीं सोचता। आप कोई कचरा माल भी अच्छे खिलाड़ी को दे दो, बोलो ये लाख रुपए, हाँ ठीक है अच्छा माल है, पर लोग इतने मूर्ख हैं क्योंकि उसकी तस्वीर देखते हैं और उसका एंडोर्समेंट पढ़ते हैं तो वो वस्तु को खरीद लेते हैं। पर भगवान जब कहते हैं अर्जुन को, तुम कहो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा, तो हमें इसको पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन को कोई पैसा नहीं दिया था भगवान ने ये कहने के लिए। अनेक उदाहरण है शास्त्र में जिसके द्वारा हम क्या देखते हैं, कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कहा गया है राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। भगवान कहते हैं जिसको भगवान बचाना चाहे उन्हें कोई मार नहीं सकता, जिसे मारना चाहे उन्हें कोई बचा नहीं सकता। प्रहलाद महाराज को मारने के लिए उसके पिता ने क्या नहीं किया, और क्या वो सफलता प्राप्त कर सके? पांडव भाइयों को नुकसान पहुंचाने के लिए दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने क्या नहीं किया, सब कुछ किया, जहर खिलाई, घर को आग लगा दिया, हाँ, पर वो सफल हुए नहीं। एक भक्त थे जिनका नाम था हरिदास ठाकुर, जन्म लिया था उन्होंने मुसलमान खानदान में, पर आकर्षित हो गए थे हरि नाम के प्रति, तो उस शहर के मुसलमान जमींदार ने कहा रोक दो, बंद करो ये, उन्होंने कहा नहीं। उनको 22 बाजारों में पिटवाया, बहुत पिटवाया, सफल नहीं हुआ। उल्टा हरिदास ठाकुर को दया आ गई, उन्होंने कहा कि ये मुझे पीट रहे हैं और अगर मैं मरूंगा नहीं तो राजा इनको खत्म कर देगा, तो उन्होंने ऐसे व्यवहार किया कि वो मर गए, तो बड़े खुश हुए और उन्हें दरिया में फेंक दिया। फिर दूसरी तरफ जाकर उन्होंने हरे नाम जप शुरू कर दिया। तो आप सब परम भगवान की शरणागत होइए, और सबसे सरल माध्यम है ये हरे नाम का उच्चारण, हरे नाम का उच्चारण कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। मीरा रोड के इस महात्मा
की ओर से प्रश्न है क्योंकि मुझे पता है कल अपने दफ्तर जाना है सबने, हाँ, कोई ज्यादा लेट प्रोग्राम हम नहीं करना चाहते,
फिर भी अगर कोई एक प्रश्न है तो सब लोग बुला सकते।
पूछिए प्रश्न पूछे, कोई वैसे तो मीरा रोड मंदिर में अनेक पंडित हैं जिन्होंने आपके सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया होगा, पर अगर कोई शंका हो, कोई क्वेश्चन नहीं? नो,
नहीं, आप ही पहले महात्मा बोले हैं महाराज जी, अब कहे कि सब महात्मा नहीं, नहीं।
नो क्वेश्चंस? हाँ, कई बार लोग हिचकते हैं प्रश्न पूछने में, सोचते कि हम पूछेंगे प्रश्न तो लोग कहेंगे देखो इसे ये भी नहीं पता। अर्जुन ने कितने प्रश्न पूछे, परीक्षित महाराज ने कितने प्रश्न पूछे, तो प्रश्न पूछना आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसमें कुछ लाभ नहीं, कुछ नुकसान नहीं, पर प्रश्न हमें पूछना चाहिए ठीक जगह पर। जैसे कि अगर आपने शरीर का कुछ इलाज कराना हो तो किसी को आप रास्ते में पकड़ कर कहते हो इलाज कर दो, नहीं, आप देखना चाहते कि आप ठीक डॉक्टर के पास जा रहे हो। तो जैसे परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे सुखदेव गोस्वामी।